नमस्कार भारत, सोमवार 14 दिसंबर, मैं हूं निखिल रंजन। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद, आज खत्म होगा संसद का गतिरोध, मंडे बनेगा गुड डे।
बिल है उन पर भी चर्चा होनी चाहिए और उसे पास होना चाहिए। हमारा मानना है कि मंडे होगा वो गुड डे साबित हो।
गुमशुदा पेंटर हेमा उपाध्याय का शव मुंबई के नाले से मिला, पुलिस ने कहा हत्या हुई है। फ्रांस के क्षेत्रीय चुनाव में धुर दक्षिण पंथी पार्टी नेशनल फ्रंट की ऐतिहासिक जीत का सपना टूटा।
Merci et bravo chers amis de vous être affranchis de mots d'ordre indécents des campagnes de calomnie et de diffamation।
सुनिएगा वसतुल्ला खान की डायरी और होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार चल रहे गतिरोध को देखते हुए आज सोमवार का दिन केंद्र सरकार के लिए संसद में महत्वपूर्ण है। गतिरोध की वजह से राज्यसभा में अभी तक कोई खास कामकाज नहीं हो सका है। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि आज से गतिरोध खत्म होगा और कामकाज आगे बढ़ सकेगा। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि संसद चलाने के लिए गतिरोध तोड़ना सरकार के रवैये पर निर्भर करेगा। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला नगर परिषद चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रही है। ये पहला मौका है जब सऊदी अरब में महिलाएं चुनाव में हिस्सा ले रही हैं और चुनाव मैदान में उतरी भी हैं। देश के निर्वाचन आयोग के मुताबिक मक्का प्रांत से सलाम बिन हिजाब अल ओतीबी चुनाव जीत गई हैं। वे देश की पहली महिला निर्वाचित प्रतिनिधि बन गई हैं। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस चुनाव में करीब 1.5 लाख महिलाओं ने मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। रियाद के मेयर इब्राहिम अल सुल्तान ने कहा कि राजधानी की राजनीति में महिलाओं के प्रवेश का वो स्वागत करते हैं। बीस सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिनमें से 3 महिलाएं और 17 पुरुष हैं जो विजयी हुए हैं। हम इन नतीजों से खुश हैं। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि परिषद में आने वाली महिलाएं बेहतर योगदान देंगी। ये थे इब्राहिम अल सुल्तान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मेक्सिको सिटी में एक अदालत ने 2 लोगों को अपहरण और हत्या के एक मामले में 500 साल जेल की सजा सुनाई है। इन दोनों पर 13 लोगों का एक नाइट बार से अपहरण करने और बाद में हत्या करने का आरोप था। यह मामला 2 साल पुराना है। मृतकों के परिवार वालों के विरोध प्रदर्शन के बाद शहर के बाहर से इन 13 लोगों के शव बरामद किए गए थे। एक सामूहिक कब्र से इन शवों को बरामद किया गया था। सरकारी वकील ने कहा कि ये हत्याएं एक ड्रग तस्कर की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। इक्वाडोर और स्वीडन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक स्वीडन के अधिकारी लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज से पूछताछ कर सकेंगे। 3 साल पहले जूलियन असांज ने 3 साल पहले निर्वसन से बचने के लिए इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली थी। उन पर स्वीडन में यौन शोषण के आरोप लगे हैं। यौन शोषण के आरोप 2010 के हैं, जो कि 2 महिलाओं ने लगाए थे। जूलियन असांज का कहना है कि अगर वे स्वीडन गए तो उन्हें अमरीका भेजा जा सकता है, जहाँ पर उन पर विकिलीक्स पर सेना और सरकारी सूचनाओं के लेन देन से जुड़े दस्तावेज लीक करने के मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। पाकिस्तान के सुन्नी कट्टरपंथी संगठन लश्कर ए जांगवी ने पारचिनार शहर में धमाकों की जिम्मेदारी ली है। इन धमाकों में 24 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, स्वागत है आपका बीबीसी रेडियो की पहली सभा में। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। भारत की संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ है। इसकी वजह से संसद, खासकर राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि आज से गतिरोध खत्म होगा और कामकाज के लिहाज से सोमवार यानी मंडे गुड डे साबित होगा। उधर विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि वो भी इस पक्ष में है कि सदन चले, लेकिन गतिरोध तोड़ना सरकार के रुख पर निर्भर करेगा। एक रिपोर्ट के साथ अमल चौधरी।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बीते हफ्ते सदन के अंदर का तापमान लगातार चढ़ा रहा। हंगामे की वजह से दोनों सदनों, खासकर राज्यसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई। मौजूदा सत्र में राज्यसभा के लिए कई बिल पेश होने हैं। सत्र अवधि 23 दिसंबर तक ही है। ऐसे में आज से शुरू हो रहा हफ्ता बेहद अहम है। केंद्र सरकार की रणनीति को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं,
हमारी तो रणनीति ये साफ है कि संसद में काम होना चाहिए और जो भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा भी होनी चाहिए, जो देश के विकास से जुड़े हुए आम लोगों के सरोकार से जुड़े हुए बिल है उन पर भी चर्चा होनी चाहिए और उसे पास होना चाहिए। हमारा मानना है कि मंडे होगा वो गुड डे साबित हो।
नकवी ने कहा कि राज्यसभा में जीएसटी बिल, रियल एस्टेट बिल और चाइल्ड लेबर समेत कई अहम बिल लिस्टेड हैं। उनका कहना है कि शुक्रवार को विपक्ष ने सकारात्मक रुख दिखाया था, ऐसे में सोमवार से तय होना चाहिए कि हम काम शुरू करें और देर रात तक काम करें। उधर सदन के कामकाज के सवाल पर विपक्षी दल कांग्रेस का भी कहना है कि पार्टी चाहती है कि संसद की कार्यवाही चले, लेकिन कामकाज चलना सरकार के रुख पर निर्भर करेगा। कांग्रेस नेता शकील अहमद:
देखिए, हम चाहते हैं पार्लियामेंट चले और एक तरह से जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात हो रही है और सरकार का रुख क्या होता है इस पर डिपेंड करेगा। सरकार कैसा पॉलिटिकल वेंडेटा से काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इसी नेशनल हेराल्ड के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक शिकायत फाइल की थी, जिस ईडी के डायरेक्टर ने उसको बंद कर दिया, उस ईडी के डायरेक्टर को 15 दिनों के अंदर हटा के फिर से उसको खुलवाने की कोशिश की गई। तो सरकार अगर इस तरह के कामों में संलग्न रहेगी और ये चाहेगी कि विपक्ष हमको हमारा सहयोग करे, तो मुझको लगता है कि कोई भी विपक्षी दल पूरी तरह सहयोग नहीं करेगा।
जाहिर है विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या आज से शुरू हो रहे हफ्ते में दोनों पक्ष तमाम गतिरोधों को पीछे छोड़कर सदन के कामकाज को चलाने के लिए तैयार होंगे।
रिपोर्ट सुना रहे थे अमल चौधरी। शीतकालीन सत्र के पहले संसद का मानसून सत्र भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बने गतिरोध को लेकर धुल चुका है। दोनों ही पक्ष कार्यवाही न चलने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ विश्लेषक आकार पटेल से बात की और पूछा कि उनकी नज़र में इस गतिरोध की वजह क्या है।
देखिए, या तो सदन में बिल्स पास हों, वो नहीं हुआ इस बार, या तो चर्चा हो कि जो मसाइल हैं देश के, जो टॉलरेंस का मुद्दा है और भी कई मुद्दे हैं, उन पर कोई बातचीत हो, कोई डिबेट हो, वो भी नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने कोशिशें की लेकिन विपक्ष जो है विफल रहा, बिलें तो पास नहीं हुई, लेकिन जो मुद्दे, जो मसाइल पे बात तक करनी थी उनको, वो भी नहीं हुई इस बार।
विपक्ष का ये कहना है कि सरकार का काम है सदन को चलाना और हम लगातार मदद कर रहे हैं, अगर सरकार सही तरीके से बात अपनी सामने रखेगी तो सोमवार से सदन में ठीक से कामकाज होगा। आपको विपक्ष के इस तर्क में कितना दम नजर आता है?
बहुत सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष ने उठाए, खासतौर पर कांग्रेस ने। पहला तो हमें ये कहा गया कि जो मंत्रीगण हैं वसुंधरा राजे जी, सुषमा स्वराज जी, उनके करप्शन की वजह से ये जो है सदन को चलाने नहीं दे रहे। उसके बाद हमें ये कहा गया कि इंटॉलरेंस का मुद्दा है। उसके बाद ये कहा गया कि जो सिंह साहब ने जो दलितों के पे जो टिप्पणी की, वो है वजह। फिर हमें ये कहा गया कि जो कांग्रेस का हेराल्ड का जो है मसला, उसकी वजह से नहीं। और ये इतनी बार ये बदला है तो ये मानने में नहीं आता कि कांग्रेस जो है ये सीरियस है इस मुद्दे पर, या तो बिलों के मुद्दे पर या सरकार के क्रिटिसिज्म के मुद्दे पर।
आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस तरह की रणनीति पर क्यों काम कर रही है? राज्यसभा में सरकार का बहुमत न होना क्या कांग्रेस के हक में जा रहा है?
सभी पार्टियां जो है ये काम करती हैं, जो विफल होती हैं फिर से अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए सदन को वो रोक देती है। ये ठीक है, भाजपा ने भी किया है बहुत दफा, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि कोई सीरियस मुद्दा नहीं है। या तो वसुंधरा राजे जी का मुद्दा लें या तो वीके सिंह का मुद्दा लें, ये बीच में कांग्रेस का जो अंदरूनी मसला है, ये जो हेराल्ड अखबार का, उसे लाना नहीं चाहिए था। इसके लाने से लगता ये है कि कांग्रेस सीरियस नहीं है, कि जो मुद्दे उन्होंने पहले उठाए थे वो सिर्फ ऑपरचुनिज्म थे। ये जाहिर हो रहा है कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ चीखना चिल्लाना, ये है उनकी स्ट्रैटेजी।
सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी ज्यादा है, सरकार की या विपक्ष की, या दोनों को मिलजुल कर ही कोई रास्ता निकालना होगा?
मेरा ये मानना है कि सरकार ने कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया कि विपक्ष को ऑन साइड लाया जाए, ये ठीक बात है। लेकिन विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस जिद्दी हो चुकी है ये इस मसले पर, के जो गांधी परिवार का नाम ये हेराल्ड के केस में आया है, इसको संसद में लाया जाए, संसद की कार्रवाई है उसको रोका जाए। तो दोनों तरफ से मैं मानता हूं कि ठीक नहीं हो रहा।
विश्लेषक आकार पटेल से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी वात्सल्य राय। मुंबई की मशहूर पेंटर हेमा उपाध्याय का कल शव मुंबई में मिला। हेमा के साथ उनके वकील का शव भी मिला है। दो दिन पहले इन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट अलग अलग थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस इसे हत्या का मामला बता रही है। पूरे ब्यौरे के साथ मुंबई से अश्विन अघोर।
शनिवार देर रात मुंबई के कांदिवली उपनगर में मिली दो लाशों की शिनाख्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक यह लाशें प्रसिद्ध पेंटर हेमा उपाध्याय तथा उनके वकील हरीश भंबानी की है। यह दोनों लाशें कार्डबोर्ड बक्सों में मिली थी। प्राथमिक तफ्तीश से यह पता चला है कि दोनों को गला घोटकर मारा गया है। पुलिस के मुताबिक सफाई कर्मचारी जो शनिवार देर रात कांदिवली के डहानुकर नगर नाले के करीब आए थे, उन्होंने इस घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी थी। दोनों लाशों की हालत से यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यह हत्याएँ पिछले दो दिनों में हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज कर तीन लोगों से पूछताछ की है। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता DCP धनंजय कुलकर्णी।
नहीं, डिटेल अभी तक उसके कोई आया नहीं। मर्डर का मामला है और पुलिस उसमें तहकीकात कर रही है बस।
हेमा उपाध्याय का जन्म गुजरात के वडोदरा में वर्ष 1972 में हुआ था। उन्होंने वडोदरा के MS विश्वविद्यालय से पेंटिंग में स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल की। हेमा उपाध्याय के नौकर हेमंत मंडल ने शुक्रवार को उनके गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मंडल के मुताबिक उपाध्याय ने उन्हें शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे फोन कर खाना खा लेने को कहा था, क्योंकि वह बाहर से ही खाना खाकर देर से लौटेगी। जब शनिवार दोपहर तक वह घर नहीं लौटी और उनका फोन नहीं लग रहा था, तब मंडल ने उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की। जब कहीं से कोई खबर नहीं आई, तब उन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हरीश भंबानी के परिजनों ने भी उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी।
मशहूर पेंटर हेमा उपाध्याय का शव मिला। रिपोर्ट सुना रहे थे अश्विन अघोर। BBC रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। और अब रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। फ्रांस के क्षेत्रीय चुनावों के दूसरे दौर की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल में दक्षिणपंथी नेशनल फ्रंट पिछड़कर तीसरे स्थान पर चली गई है। पहले दौर में बढ़िया प्रदर्शन करने के बावजूद नेशनल फ्रंट को एक भी सीट पर जीत हासिल होती नहीं दिख रही, ऐसा शुरुआती रुझानों से पता चल रहा है। फ्रांस में 2017 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये क्षेत्रीय चुनाव राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक जीत हासिल करने की ओर बढ़ रही पार्टी के पहिए कैसे थम गए, पूरा ब्यौरा सुनिए हरिता कांडपाल से।
फ्रांस में स्थानीय चुनाव में एग्जिट पोल के मुताबिक धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल फ्रंट चुनाव में हारकर तीसरे नंबर पर चली गई है। ये नतीजे क्षेत्रीय चुनाव में दूसरे दौर की वोटिंग के हैं। इसके साथ ही मैरी ली पेन की नेशनल फ्रंट के ऐतिहासिक जीत के सपने चूर होते दिख रहे हैं। शुरुआती नतीजों से पता चल रहा है कि नेशनल फ्रंट पार्टी इलाके की एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है। नेशनल फ्रंट की नेता मैरी ली पेन और उनकी भतीजी भी इन चुनावों में हार रही हैं। मैरी ली पेन ने कहा कि मुख्यधारा की दोनों पार्टियों ने उन्हें हराने के लिए आपस में हाथ मिला लिया है। उन्होंने कहा,
Merci et bravo, chers amis, de vous être affranchis de mots d'ordre indécents.
इन चुनावों में लोगों से बहुत भद्दे तरीके से झूठ बोला गया है। रिपब्लिकनों के महलों में गढ़ी गई झूठी जानकारी लोगों को बताई गई है। ये सब उन लोगों ने किया है जो इस सिस्टम पर आश्रित हैं, जो फ्रांस के लोगों के दम पर अमीर बनते जा रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां भी इसमें बिना संदेह शामिल हैं। ये थे मैरी ली पेन के शब्द। इन चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति निकोला सार्कोजी की मध्य दक्षिण रिपब्लिकन पार्टी सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी से आगे चल रही है। पहले चरण में नेशनल फ्रंट को बढ़त मिलती देख सोशलिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार हटा लिया था, जिससे उसके वोटर भी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ मुड़ सके। मैरी ली पेन के इलाके उत्तरी क्षेत्र से आगे चल रहे जेवियर बर्ट्रांड ने कहा,
Je remercie les électeurs d'avoir protégé notre belle région. Je remercie ceux qui m'ont fait confiance dès le premier tour.
मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैं वामपंथी वोटरों को भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने नेशनल फ्रंट को रोकने के लिए वोट डाला। ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि नेशनल फ्रंट को हमने रोक दिया। ये थे जेवियर बर्ट्रांड के शब्द। वहीं फ्रांस के प्रधानमंत्री मानुएल वाल्स ने कहा कि अभी जीत का जश्न मनाने का वक्त नहीं है। मानुएल वाल्स ने कहा,
Aucun soulagement, aucun triomphalisme, aucun message de victoire.
ये वक्त राहत या जीत के जश्न का नहीं है, क्योंकि दक्षिणपंथी पार्टी का खतरा अभी टला नहीं है। पिछले चरण के नतीजों को मैं भूला नहीं हूँ।
ये थे मानुअल वॉल्स के शब्द। 6 दिसंबर को हुए पहले दौर के चुनाव में नेशनल फ्रंट को ऐतिहासिक कामयाबी मिली थी, जिसके बाद काफी उम्मीद बंधी थी कि मैरीन ली पेन की पार्टी को एक बड़ी जीत मिलेगी। स्थानीय परिवहन, शिक्षा और आर्थिक विकास में फ्रांस के क्षेत्रीय स्तर पर काफी अहम फैसले लिए जाते हैं, इस लिहाज से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं 2017 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनावों से पहले ये क्षेत्रीय चुनाव राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलां की वामपंथी पार्टी के लिए अपनी पकड़ दिखाने का आखिरी मौका भी है। चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक अगर दक्षिणपंथी नेशनल फ्रंट एक भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाती तो केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने का रास्ता उसके लिए बंद हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि फ्रांस में सत्ता के लिए दो ही दावेदार पार्टियां रह जाएंगी, एक सोशलिस्ट और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। फ्रांस में बेरोजगारी, यूरोप से बढ़ती चिड़चिड़ाहट और पेरिस हमलों के बाद सुरक्षा बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं।
फ्रांस के क्षेत्रीय चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग के बाद दक्षिणपंथी नेशनल फ्रंट पिछड़कर तीसरे स्थान पर चली गई है और ऐसा एग्जिट पोल से पता चल रहा है। रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। और अब आज अखबारों में क्या छपा है दिल्ली के, ये देख लेते हैं। हरिता जी अखबारों पर नज़र डाल चुकी हैं, बताइए हरिता क्या है अखबारों में आज?
जी निखिल, सभी अखबारों में मुख्य समाचार के रूप में जो खबरें छाई हैं वो हैं दिल्ली की शकूर बस्ती में झुग्गियों को हटाने को लेकर सारी खबरें जुड़ी हैं।
और रेलवे के विभाग ने ये कार्रवाई की थी और उसमें एक बच्चे की मौत की खबर
है। और इसमें हिंदुस्तान ने लिखा है कि शकूर बस्ती मामले की जाँच मजिस्ट्रेट को सौंपी। और नवभारत टाइम्स ने इस पर जो हेडलाइंस दी है उसमें लिखा है कि टूटी झुग्गियों पर तैयार टकराव की नई दीवार। इसमें लिखा है कि रेलवे ने अतिक्रमण हटाया, दिल्ली सरकार का बेघर करने का आरोप। इसमें दो वर्जन भी दिए गए हैं कि रेलवे के डिविजनल मैनेजर अरुण अरोड़ा ने कहा है कि अभियान के दौरान बच्चे की मौत की बात बेबुनियाद है और ये जो हटाए गए हैं झुग्गियाँ इससे 1.5 घंटे पहले ही बच्चे की मौत हो गई है। जबकि दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि इसमें हत्या का मामला दर्ज करवाया जाएगा। अमर उजाला में भी इसे लेकर हेडलाइन है कि बच्चे की मौत पर केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठनी। वहीं दूसरी खबरों की बात करें तो प्रदूषण के खिलाफ जंग, आप सरकार परमिट देगी, हिंदुस्तान में ये हेडलाइन है। दिल्ली में 10,000 नए ऑटो उतारे जाएंगे। ये जो पिछले दिनों ऑड इवन योजना गाड़ियों की लागू करने की बात केजरीवाल सरकार ने कही है उसकी तैयारी के रूप में ये घोषणा की गई है कि नए 10,000 ऑटो लोगों की सुविधा के लिए।
ये तो ज़्यादा प्रदूषण फिर फैलाएंगे, ऐसा नहीं है
जी? ये इसी पर ठनी हुई है कि या तो गाड़ियां हटाएं और प्रदूषण कम करें या फिर नए सीएनजी ऑटो लाए जाएं और प्रदूषण कम करें। तो अब ये क्या इसका असर होगा ये तो जब लागू होंगी योजनाएं तब हम देखेंगे। इसके अलावा जो कुछ खबरें हैं उसमें मुंबई में कलाकार हेमा उपाध्याय और उनके वकील की हत्या की खबर को भी पहले पन्ने पर कई अखबारों ने जगह दी है। और पेरिस में पर्यावरण में बदलाव पर हुए समझौते को भी प्रमुख अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसने लिखा है कि पेरिस अकॉर्ड ऑफर्स होप बट कुड हैव डन मोर, मतलब कि भारत ने कहा है कि इससे समझौते से काफ़ी कुछ और किया जा सकता था। तो
बहुत शुक्रिया हरिता कांडपाल इस अखबारों की पूरी समीक्षा के लिए। नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो पर आप पहली सभा में हैं। आज निखिल रंजन के साथ ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। और मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 93 साल के दिलीप कुमार को कल मुंबई में उनके घर जाकर सम्मानित किया। 1940 के दशक में सिनेमा के पर्दे पर दस्तक देकर बरसों तक यहाँ राज करने वाले दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसी आज के इस मौके पर जो है उनके फिल्मी सफर पर नजर डाल रहे हैं अशोक कुमार।
तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन था।
के आसिफ की मशहूर फिल्म मुगले आजम के लिए बरसों पहले दिलीप कुमार ने जब ये डायलॉग बोला होगा तब खुद उन्हें भी यकीन नहीं होगा कि हिंदी सिनेमा से मोहब्बत करने वाले दशकों बाद भी उनके रुतबे को बदस्तूर बरकरार रखेंगे, उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1944 में की और कल थी 2015 के दिसंबर की 13 तारीख, यानी इस बेमिसाल सफर को 71 साल हो गए हैं। तालियों की इसी गूंज के बीच कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिलीप कुमार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 93 साल के दिलीप कुमार पुरस्कार लेने दिल्ली नहीं आ सके तो गृह मंत्री उनके मुंबई स्थित घर पर पहुंच गए। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। जिस वक्त दिलीप कुमार को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा जा रहा था, उन खास लम्हों में खुशी का इजहार करती उनकी पत्नी सायरा बानो भी पास ही मौजूद थीं। हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार का कद क्या है, इसका अंदाजा 11 दिसंबर यानी दिलीप कुमार के जन्मदिन के मौके पर सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के ट्वीट से लगाया जा सकता है। अमिताभ ने लिखा कि भारतीय सिनेमा का इतिहास इस तरह लिखा जाएगा, दिलीप कुमार के पहले और दिलीप कुमार के बाद। साल 1944 में रिलीज हुई ज्वारभाटा से फिल्मों में कदम रखने वाले दिलीप कुमार ने कामयाबी के वो निशान बनाए कि उनके बाद हर अभिनेता उनके ही नक्शे कदमों पर चलने को बेताब दिखा। 40 और 50 के दशक में अंदाज, दाग, दीदार और देवदास जैसी फिल्मों के जरिए दिलीप कुमार का जादू सिने प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलने लगा।
कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि बस सांस
ले। ये जादू कई दशकों तक कायम रहा। मुगले आजम, गंगा जमुना और लीडर जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने अपने अभिनय के अलग अलग रंग बिखेरे। 1980 के दशक में क्रांति फिल्म से दिलीप कुमार ने चरित्र अभिनेताओं वाले किरदार निभाने शुरू किए, लेकिन अब भी वो फिल्मी पर्दे पर नायकों पर हावी रहे, भले ही वो महानायक अमिताभ बच्चन ही क्यों न हों। अमिताभ के साथ की गई शक्ति के अलावा सुभाष घई की फिल्म कर्मा में उनके किरदार को अब तक याद किया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में बेमिसाल योगदान के लिए दिलीप कुमार को साल 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अब इस बेमिसाल सितारे के साथ जुड़ गया है देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, पद्म विभूषण। ये तालियां गवाह हैं कि वक्त की बंदिशों ने दिलीप कुमार की सक्रियता भले ही कम कर दी हो, लेकिन उनके चाहने वालों की तादाद जस की तस है।
अशोक कुमार नजर डाल रहे थे दिलीप कुमार के फिल्मी सफर पर, और अब उन खबरों की बात कर लेते हैं जिन पर आज रहेगी हमारी नजर।
भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत पाकिस्तान रिश्तों पर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगी। पिछले हफ्ते उनकी पाकिस्तान यात्रा और दोनों देशों के बीच हाल ही में बातचीत की शुरुआत के बारे में सुषमा स्वराज संसद को जानकारी देंगी। सुषमा स्वराज अफगानिस्तान पर हार्ट ऑफ एशिया बहुपक्षीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गई थीं। वहां उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मुलाकात की, जिसके बाद 9 दिसंबर को इस्लामाबाद में दोनों देशों ने घोषणा की थी कि अब व्यापक बातचीत करेंगे। शीना बोरा हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार पीटर मुखर्जी की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। पीटर मुखर्जी को 19 नवम्बर को CBI ने गिरफ्तार किया था। झारखंड की लोहरदगा विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव होना है और 17 दिसंबर को मतगणना होगी। लोहरदगा के विधायक आज सू पार्टी के कमल किशोर भगत को जून में हत्या के प्रयास के मामले में सजा हुई थी, जिसके बाद ये विधानसभा सीट खाली हो गई थी। तुर्की के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने पर हो रही बातचीत के सिलसिले में ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन आज आर्थिक और मौद्रिक नीति पर चर्चा के लिए चैप्टर 17 की शुरुआत करेगा। तुर्की और सदस्य देश साइप्रस के बीच विवाद और तुर्की के मानवाधिकार के रिकॉर्ड की वजह से उसकी सदस्यता को लेकर यूरोपियन यूनियन के साथ चर्चा में काफी कम प्रगति हुई है। 3 संदिग्ध ISI एजेंट इरशाद अंसारी, असफाक अंसारी और मोहम्मद जहांगीर की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही है। इन तीनों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने आपराधिक साजिश रचने और भारत के खिलाफ युद्ध छिड़ने के मामले में पुलिस हिरासत में भेजा था। इन तीनों को STF ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के शक में पिछले रविवार कोलकाता के इकबालपुर से गिरफ्तार किया था। इनके पास से नकली कागजात और 5 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए गए थे। दुबई में आज से अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग मैचों की शुरुआत हो रही है। इस प्रतियोगिता में टेनिस जगत के दिग्गज खिलाड़ी और उभरते सितारे हिस्सा लेंगे। आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का आखिरी दिन है।
आज सोमवार है और आपके साथ ही हम सब लोगों को भी इंतजार रहता है पाकिस्तान से वसतुल्लाह खान की डायरी का, जो आ चुकी है। तो आइए सुनते हैं।
जब विभाजन हुआ तो गुलाम हुसैन शायद 2 साल का था। माँ मर गई थी और बाप ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया, मगर ये सोच कर के रास्ते की मार काट का कुछ ठीक नहीं, उसने नन्हे गुलाम हुसैन की उंगली अपने बड़े भाई को पकड़ाई और सीमा पार कर ली और शेखुपुरा के गांव माजू चक में बस गया। यहाँ शादी की, बच्चे हुए और 1982 में मर गया। इन बच्चों में से एक का नाम मोहम्मद इस्लाम था। इस्लाम को ये तो मालूम था कि राजौड़ी में उसका कोई बड़ा भाई गुलाम हुसैन रहता है, मगर किससे पूछे। लगभग 18 वर्ष पहले राजौड़ी से एक मेहमान आया तो बताया कि वो गुलाम हुसैन को जानता है। मेहमान ने अपना फ़ोन नंबर भी दिया और उसे गुलाम हुसैन के पाकिस्तानी भाइयों और बहनों ने अपनी बहुत सी तस्वीरें दीं। बाद में कई बार फ़ोन किया मगर कॉल मिलने से पहले ही कट जाती। जब मोहम्मद इस्लाम दुबई में नौकरी करने गया तो उसकी एक बार राजौड़ी में बड़े भैया गुलाम हुसैन से बात हो ही गई। पिछले हफ्ते गुलाम हुसैन को पाकिस्तान का वीज़ा मिल गया और 68 वर्ष बाद उसकी अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से पहली मुलाकात हो ही गई। वीज़ा महीने भर का है और गुलाम हुसैन की उम्र 70 वर्ष। उसे यकीन नहीं कि दोबारा अपने बहन भाइयों से कभी मिल सकेगा, लिहाजा घर वापसी से पहले ही उदास उदास सा है। राजस्थान से मिले पाकिस्तानी जिले थरपारकर की छाछरो तहसील में सुमरहाड़ नाम का एक गांव जाने कब से आबाद है, मगर दिक्कत बस इतनी है कि सुमरहाड़ के 2 पाड़े भारत में और 2 पाकिस्तान में रह गए हैं और गांव का कुआं नो मैंस लैंड में है। जब तक लोहे की बाढ़ नहीं थी तो सुमरहाड़ वाले एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक हो जाते थे और कुएं से पानी भी भरते थे, लेकिन बाढ़ क्या लगी, जीवन ही बाढ़ हो गया। नई पीढ़ी तो एक दूसरे को ठीक से जानती भी नहीं। 1990 के बाद से सुमरहाड़ के 3-4 लोग इंडिया गए ताकि अपनी शादीशुदा बेटियों से मिल सकें जिन्हें वो रोज़ बाढ़ के इस पार से देखा करते थे। पता है ये 3-4 लोग कैसे पहुंचे? पहले उन्हें इस्लामाबाद जाके वीज़ा लेना पड़ा, फिर वाघा चेक पोस्ट से गुजर के दिल्ली जाना पड़ा और फिर दिल्ली से बाड़मेर और फिर गाँव, यानी 3,000 किलोमीटर चल के वो अपने ही गांव के दूसरे हिस्से में पहुंचे जो एक दूसरे से लगभग 800 गज की दूरी पे थे। अब दोनों हिस्सों को सीमा से और पीछे हटा दिया गया है, मगर कुआं आज भी नो मैंस लैंड में पड़ा है। सुमरहाड़ वाले कहते हैं कि पानी खींचने वाले बैल को कुएं का एक चक्कर पूरा करने के लिए आधा इंडिया से और आधा पाकिस्तान से गुजरना पड़ता था। अब ना वो बैल रहे और ना ही कुएं में पानी, बस एक गोल सी भुरभुरी सी मुंडेर बची है दोहरी बाढ़ के बीच।
वसतुल्लाह खान की ये डायरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार चल रहे गतिरोध को देखते हुए आज केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण दिन। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला नगर परिषद चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रही। ये पहला मौका है जब सऊदी अरब में महिलाएं चुनाव में हिस्सा ले रही हैं और चुनाव मैदान में उतरी हैं। मेक्सिको सिटी में एक अदालत ने 2 लोगों को अपहरण और हत्या के मामले में 500 साल जेल की सजा सुनाई है। इन दोनों पर 13 लोगों का एक नाइट बार से अपहरण करने और बाद में हत्या करने का आरोप था। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की सोशल मीडिया पर आलोचना करने वाले जाने माने मानवाधिकार वकील पर मुकदमा चलेगा। पू जिनकिंग पर नफरत फैलाने और झगड़ा भड़काने के आरोप लगाए गए हैं। इक्वाडोर और स्वीडन के बीच एक समझौता हुआ है जिसके मुताबिक स्वीडन के अधिकारी लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज से पूछताछ कर सकेंगे। 3 साल पहले जूलियन असांज ने निर्वसन से बचने के लिए इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली थी। उन पर स्वीडन में यौन शोषण के आरोप लगे हैं। पाकिस्तान के सुन्नी कट्टरपंथी संगठन लश्कर ए जांगवी ने पारचिनार शहर में धमाकों की जिम्मेदारी ली। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक 1 घंटे बाद विश्व भारती में। आज स्टूडियो संभाल रहे हैं राजेश चौहान। सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति और देखते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।